दिन भर 14 मार्च गुरुवार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का नमस्कार। मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र में मिली नाकामी के बाद विपक्ष का मोदी सरकार पर निशाना।
ये बात सच साबित हुई कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो झूला डिप्लोमेसी है जो फिर से नाकाम साबित हुई।
करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच हुई बैठक।
The talk held today between India and Pakistan is the first one of this kind.
साथ ही जानेंगे भारत और पाकिस्तान में कितनी तेजी से हो रहा है करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण।
लेबर की तो यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी लेबर यहाँ पे काम, लेबर तो छोड़े आप यहाँ पे मशीनरी काउंट नहीं कर सकते कि कितनी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है और 24 घंटे काम हो रहा है।
होंगे आपके पत्र भी, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। पुलवामा हमले के लगभग एक महीने बाद करतारपुर गुरुद्वारा साहिब कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आज एक अहम बैठक हुई। करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारतीय और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संचालन जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। केरल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले वडक्कन का बीजेपी में शामिल होना पार्टी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक वडक्कन ने कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से सेना पर सवाल उठाए गए उससे वो बुरी तरह आहत हैं, इसीलिए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया। सीरिया के भविष्य को लेकर ब्रसेल्स में एक सम्मेलन किया जा रहा है। ये सम्मेलन यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य करीब 9 अरब डॉलर जुटाना है ताकि लंबे समय से गृह युद्ध झेल रहे सीरिया को इस स्थिति से उबारा जा सके। सम्मेलन में बोलते हुए यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी ने कहा कि सीरिया के लोग शांति के लिए बेकरार हैं। उन्होंने कहा,
The people of Syria ask for a country where each one of them can find their place. An inclusive Syria.
सीरिया के लोग एक ऐसा देश चाहते हैं जहां हर कोई एक समान हो, एक लोकतांत्रिक सीरिया जहां सबकी बातें सुनी जाएं। उन्हें एक पुनर्गठित सीरिया चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जिसे वो अपना घर कह सकें। हम सब भी यही चाहते हैं कि सामूहिक तौर पर हमारे बीच मतभेद ना हो, और यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे बलपूर्वक हासिल नहीं किया जा सकता है। ये थे फेडरिका मोघेरिनी के शब्द। उत्तरी आयरलैंड की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस ने इस बात की पुष्टि की है कि वो लंदन डेरी में हुई हत्याओं के सिलसिले में एक सैनिक पर मुकदमा करने जा रहा है। ये घटना साल 1972 में रविवार को हुई थी और इसलिए बाद में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाने लगा। इस सैनिक को जेम्स रे और विलियम मिकिनी की हत्या के अलावा जोसेफ फ्रील, माइकल क्विन, जो महन और पैट्रिक ओडोनेल की हत्या की साजिश का अभियुक्त बनाया गया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के निदेशक स्टीवन हेरॉन ने कहा कि यह फैसला हल्के में नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा,
I am acutely aware that it has been a long road for the families to reach this point.
मुझे वाकई मालूम है कि पीड़ित परिवारों ने इंसाफ पाने के लिए लंबा सफर तय किया है और आज का दिन भी बहुतों के लिए मुश्किल होने वाला है। हम उन लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्पक्षता से निभाएंगे जिन पर हमारे फैसलों का असर पड़ने वाला है। पब्लिक प्रोसिक्यूशंस के निदेशक स्टीवन हेरॉन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में एक बहुमंजिला इमारत ढह गई थी जिसके मलबे से अब लोगों को निकालने का काम बंद कर दिया गया है। बुधवार को ये इमारत भरभराकर गिर पड़ी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। इमारत के मलबे से 50 लोगों को बचाया गया है। इस इमारत की पहली मंजिल पर एक प्राइमरी स्कूल था। साल 2017 में ही इस इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था, लेकिन इस आदेश की अनदेखी की गई। लागोस में इस मामले की जाँच की जा रही है और अधिकारियों ने कहा है कि उन्होंने जाँच कमेटी का गठन किया है ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। फेसबुक में आई गड़बड़ी अब दूर होती दिख रही है। लगभग 12 घंटे तक बाधित रहे फेसबुक सेवा ठीक होती नजर आ रही है। कंपनी का कहना है कि इस गड़बड़ी का संबंध हैकिंग से नहीं था, हालांकि आम तौर पर इस तरह की गड़बड़ी हैकिंग की वजह से ही खड़ी होती है। बीबीसी समाचार।
अभिवादन स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। कल संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की काली सूची में डालने के प्रस्ताव को चीन द्वारा वीटो किए जाने के बाद भारत में आज इस पर पूरे दिन राजनीतिक बयानबाजी होती रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से डर गए हैं। भारत के खिलाफ चीन की इस हरकत के बाद उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। राहुल के इस बयान के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि ट्विटर पर कूटनीति नहीं चलती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इन बयानबाजियों से भारत को कमजोर कर रहे हैं।
राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। आज मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि बिकॉज इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है आज उस पर सवाल उठेगा। मित्रों, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं।
राहुल गांधी के अलावा AIMIM चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा।
आज हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि हर टीवी चैनल के ऊपर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर पूरे मुल्क को नेशनलिज्म के ऊपर और सिक्योरिटी पर ज्ञान देते हैं। मेरा उनसे एक ही सवाल है कि कहाँ गए आपकी गीरत, कहाँ गए आपका नेशनलिज्म और सिक्योरिटी। मगर ये बात सच साबित हुई कि नरेंद्र मोदी की जो डिप्लोमेसी है वो झूला डिप्लोमेसी है, जो फिर से नाकाम साबित हुई।
मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की भारत की राह में चीन ने चौथी बार रोड़ा अटकाया है। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को इस बार अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन हासिल था, लेकिन भारत को एक बार फिर नाकामी हाथ लगी है। आखिरकार भारत कूटनीति के किस मोर्चे पर नाकाम हो रहा है? यही सवाल मैंने पूछा दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती से।
मैं इसको डिप्लोमेटिक फेल्योर नहीं मानता हूँ। ये एक प्रोसेस है जिसमें हमको और प्रेशराइज और डायलॉग सेना के साथ और पूरा ये सारे राष्ट्रों के साथ करना होगा, और पाकिस्तान के साथ भी इसका डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी टेररिस्ट एक्टिविटीज है। और पाकिस्तान, जब तक हम ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये दोनों चीज सही है, एक है कि अजहर मसूद के नेतृत्व में हमारे ऊपर हमला हो रहा है, टेररिस्ट हमला, ये सही है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी इस तरह का टेररिस्ट एक्टिविटी चल रहा है जिसके लिए पाकिस्तान को भी बहुत सारे स्टेप्स लेना जरूरी है। तो ये टेररिज्म का मुद्दा पे इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ये सब मिल के बातचीत करना चाहिए। और क्योंकि चाइना में भी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट एक्टिव हैं सिंचियांग में, इसलिए इसका कंसल्टेशन और इंटेंसली होना चाहिए।
जी सर, आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन होना चाहिए, तो अभी तक जो कंसल्टेशन नहीं हुआ, इसका मतलब कंसल्टेशन चाइना के साथ भी नहीं किया गया, और इधर पुलवामा के बाद पाकिस्तान के साथ भी भारत के संबंध जिस तरीके से तनावपूर्ण है, तो इस पूरे मामले में जो एक तरीके से चाइना ने फिर वीटो कर दिया है, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
इसको हम ना डिप्लोमेटिक फेल्योर बोलेंगे, ना किसी का एक पार्टी कोई किसी का जिम्मेदारी ढूंढेंगे, ये गलत चीज होगा। हम सोचते हैं कि इसका सीरियसनेस के बारे में और बहस होना चाहिए, और अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, ये तो सब इसमें सम्मत हैं, लेकिन फिर भी चाइना के साथ इसको और स्ट्रांग डायलॉग होना चाहिए। और जब तक चाइना कन्विंस नहीं होगा कि हम भी पाकिस्तान का सिचुएशन समझ रहे हैं, तब तक ये सिचुएशन बदलेगा नहीं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में इंडिया, पाकिस्तान, चाइना तीनों का एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ जब तक नहीं होगा, कल हो सकता है चाइना मान जाएगा, फिर और कहाँ पे उसका ये प्रॉब्लम फिर दिखा देगा। ये जो हम सिर्फ ये एक इंडिविजुअल टेररिस्ट लीडर का लिस्टिंग का ऊपर हम सारा डिप्लोमेसी को केंद्र किए हैं, ये कुछ एग्जेजरेशन है। का साथ साथ हमको और बहुत सारे चीजें उठाना पड़ेगा।
संयुक्त राष्ट्र में भारत क्यों हुआ नाकाम, अधिक जानकारी दे रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर मनोरंजन मोहंती।
कहां पहुंच पाया बिहार, कैसी है बिहार की राजनीति, क्या चाहता है बिहार का युवा। बिहार की नब्ज टटोलने पहुंच रही है बीबीसी हिंदी की टीम पटना। चर्चा में शामिल होंगे कई राजनेता और सवाल पूछ पाएंगे आप भी। इस बार बोलेगा बिहार 15 मार्च को पटना के अधिवेशन भवन में 12 बजे दोपहर से।
अब रुख करते हैं अटारी वाघा सीमा का। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बाद आज भारत की अटारी सीमा पर भारत पाकिस्तान अधिकारियों के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बैठक हुई। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव दीपक मित्तल ने बताया कि दोनों देशों की कॉरिडोर को जल्द शुरू करने पर सहमति बनी है। अटारी वाघा सीमा से सुनिए रविंदर सिंह रॉबिन की रिपोर्ट।
भारत और पाकिस्तान के दरमियान चल रहे तनाव के बीच करतारपुर कॉरिडोर पर भारत और पाकिस्तान में आज पहली बैठक हुई। पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब और भारत के डेरा बाबा नानक के बीच करतारपुर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। भारत के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एसएल दास भारत का नेतृत्व कर रहे थे और पाकिस्तान दल का नेतृत्व वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद फैसल कर रहे थे। बैठक अटारी सीमा पर हुई। दोनों पक्षों ने बैठक के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया। दोनों ने इस बात पर सहमति जतलाई कि वो कॉरिडोर को समय समय के रहते खोल देंगे। बैठक में प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण और उसके पहलुओं पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों में अभी भी कुछ बातों पर एक राय नहीं बन पाई है। भारत का कहना है कि वे रोजाना 5,000 के करीब श्रद्धालु भेजना चाहते हैं और खास मौकों पर यह संख्या 10,000 हो सकती है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि वे अभी 500 श्रद्धालुओं की ही योजना और उन्हें आने की इजाज़त देंगे। और जबकि भारत ने सिखों के अलावा अन्य धर्मों के लोगों जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं उनको भी इस कॉरिडोर के रास्ते मत्था टेकने और जाने की तजवीज़ दी है, जिस पर पाकिस्तान ने अभी अपना जवाब देना है। और पाकिस्तान का कहना है कि श्रद्धालु बसों से गुरुद्वारा सब तक जाएंगे, जबकि भारत का कहना है कि उन्हें पैदल जाने की भी इजाज़त दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी पाए दीपक मित्तल ने इस बात को साफ किया कि करतारपुर पर बातचीत करने का मतलब दोनों देशों में द्विपक्षीय बातचीत का शुरू होना कतई नहीं मानना चाहिए। उनका कहना था, भारत ने आज की बैठक में खालिस्तान के मुद्दे पर भी पाकिस्तान को अवगत कराया। भारत ने इस पे अपनी चिंता व्यक्त की कि पिछले समय में जब भी सिख श्रद्धालु पाकिस्तान के गुरुद्वारों के दर्शनों के लिए जाते थे, पाकिस्तान में खालिस्तानी विचारधारा के लोग वहां पर भारत विरोधी प्रचार करते हैं। इस पर दीपक मित्तल का कहना था, यहाँ बताते चलें कि गत वर्ष पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर की नींव रखी थी और उन्होंने पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और भाजपा अकाली के मंत्री हरसिमरत कौर बादल को भी वहां पर बुलाया था। भारत पाकिस्तान की सरकारों का कहना है कि वे इस वर्ष नवम्बर तक कॉरिडोर को शुरू कर देंगे। जब सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी का 550वां जन्म वर्षगांठ मनाया जा रहा होगा। बीबीसी हिंदी के लिए अमृतसर से रविंदर सिंह रॉबिन।
जहां करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत तेज हो रही है, वहीं गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक के किसान इससे थोड़े नाखुश हैं। उनकी नाखुशी करतारपुर कॉरिडोर के लिए ली जा रही उनकी जमीन को लेकर है। ये किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन को लेकर उचित मुआवजा मिले। डेरा बाबा नानक से हमारे सहयोगी सरबजीत सिंह धालीवाल की रिपोर्ट सुनिए।
जमीन का सर्वे करने आई टीम के साथ बहस करने वाले ये लोग डेरा बाबा नानक के किसान हैं। किसान इन्हें जमीन से बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। असल में इन्हीं किसानों की जमीन भारत और पाकिस्तान के बीच बनने वाले डेरा बाबा नानक करतारपुर कॉरिडोर के लिए अधिग्रहण की जा रही है। किसान जमीन के बदले में उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
बार बार नहीं शांति सानू कर दी तो यहां देखो जो कहा
करतारपुर कॉरिडोर के लिए भारत सरकार गुरदासपुर के चार गांव के किसानों की करीब 100 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर रही है, जिनमें डेरा बाबा नानक के किसान भी शामिल हैं। 52 वर्षीय किसान जोगिंदर सिंह के पास केवल 3 एकड़ जमीन है। सब्जी की खेती के साथ साथ जोगिंदर सिंह दूध बेचकर गुजारा चलाते हैं। जोगिंदर सिंह ने बताया कि उसका जानवरों का तबेला कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि सड़क का निर्माण यहीं से होना है। उन्होंने बताया सरकार ने अभी तक उनकी जमीन का सही मूल्य भी तय नहीं किया।
करतारपुर कॉरिडोर,
हम खुश हैं कि करतारपुर कॉरिडोर बन रहा है, पर हमें जमीन का उचित मुआवजा मिलना चाहिए।
दूसरी तरफ गुरदासपुर जिला प्रशासन का कहना है कि वो सब कुछ कानून के हिसाब से कर रहे हैं।
असी नेशनल हाईवे नु जगह एक्वायर करके जेडी ओ दे रहे हैं।
काबिल सरकारी अधिकारी जमीन का अधिग्रहण कर रहे हैं। किसानों को जमीन का उचित मुआवजा कानून के हिसाब से ही दिया जाएगा।
जेडी दी पेमेंट हैगी है जो हैगी है वो थ्रू NHAI जेडी है वो डिसबर्स करेंगे सी।
करतारपुर पाकिस्तान में आता है लेकिन इसकी भारत से दूरी महज 4.5 किलोमीटर है।
हम इस वक्त मौजूद हैं भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर। ये जो वो जगह है जहां पर करतारपुर साहब और डेरा बाबा नानक कॉरिडोर बनना है। अब यहां से अब तक लोग दूरबीन के जरिए करतारपुर के जो दर्शन करते थे, पर अब लोगों को उम्मीद है कि इस कॉरिडोर के बनने से वो पाकिस्तान जाकर दर्शन कर सकेंगे।
मान्यताओं के मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक 1522 में करतारपुर आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 18 वर्ष यहीं पर गुजारे थे, इसलिए सिख भाईचारे के लिए यह स्थान काफी खास है। सरबजीत सिंह धालीवाल, BBC, डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर।
भारत के डेरा बाबा नानक के बाद अब रुख करते हैं सीमा उस पार करतारपुर साहिब का। एक ओर भारत में जहां करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण पर लोगों का विरोध चल रहा है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में इसी कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से चल रहा है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में गोविंद सिंह 18 साल से ग्रंथी हैं। BBC संवाददाता शुमाइला जाफरी ने उनसे बात की, साथ ही करतारपुर कॉरिडोर में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। सुनिए उनकी ये खास रिपोर्ट।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।
सरदार गोबिंद सिंह पिछले 18 बरस से गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के ग्रंथी हैं। आज वो अकेले ही गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं। आमतौर पर तो ये हॉल लोगों से भरा रहता है, लेकिन इन दिनों करतारपुर साहिब यात्रियों के लिए बंद है क्योंकि यहाँ दिन रात कॉरिडोर की तामीर का काम चल रहा है।
जी, लेबर की तो यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी लेबर यहाँ पे काम, लेबर तो छोड़े आप यहाँ पे मशीनरी काउंट नहीं कर सकते कि कितनी मशीनरी यहाँ पे काम कर रही है, और 24 घंटे काम हो रहा है। तो वहाँ पे जो हमारे फंक्शनल्स भी फंक्शन होते हैं उनके लिए, उसको हम दीवान स्थान कहते हैं, वो उसके लिए पाइलिंग हो रही है। पाइलिंग का मतलब नीचे से जो पिलर वगैरह जो उसकी बेस बनानी होती है ग्राउंड की, वो बिल्डिंग की, वो बन रही हैं। उसके बाद 12 दरी का काम शुरू हुआ है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पे कमरे बने संगत के ठहरने के लिए, उनके लिए काम शुरू हुआ।
कॉरिडोर का काम फौज की कंस्ट्रक्शन फर्म फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में किया जा रहा है। करतारपुर मंसूबे के पहले मरहले में शक्करगढ़ नारोवाल रोड को बॉर्डर से मिलाने के लिए 7 किलोमीटर लंबी सड़क और दरियाए रावी पर 800 मीटर लंबा पुल भी बनाया जा रहा है।
यहां से इंटरनेशनल बॉर्डर तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। यही वो रास्ता है जो कि करतारपुर साहिब को इंडिया के बॉर्डर से मिलाने जा रहा है। 28 नवंबर को जब इमरान खान ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की इनॉग्रेशन की थी तो इस जगह पे सिवाय खेतों के किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर सड़क का काम काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लिया गया है।
रफीक मसीह का गांव दोधा गुरुद्वारे से 1 किलोमीटर के फासले पर है। रफीक और उनके गांव के सैकड़ों लोग करतारपुर कॉरिडोर बनने पर बहुत खुश हैं और समझते हैं कि ये मंसूबा उनकी जिंदगियाँ बदल देगा।
हमारे इलाके को ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर सड़कें बनेंगी, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे और हमारा इलाका ये VIP बन जाएगा, बहुत ही अच्छा बन जाएगा।
कॉरिडोर में पाकिस्तानी और इंडियन यात्रियों के लिए अलहदा अलहदा गेट भी बनाए जा रहे हैं, तहम गुरुद्वारे के अंदर यात्री एक दूसरे से मिलजुल सकेंगे। पाकिस्तान की सरकार और फौज ने बाबा गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के मौके पर इस कॉरिडोर को सिखों को तोहफे में देने का ऐलान किया है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज, करतारपुर, पाकिस्तान।
कहां पहुंच पाया बिहार? कैसी है बिहार की राजनीति? क्या चाहता है बिहार का युवा? बिहार की नब्ज टटोलने पहुंच रही है BBC हिंदी की टीम पटना। चर्चा में शामिल होंगे कई राजनेता और सवाल पूछ पाएंगे आप भी। इस बार बोलेगा बिहार। 15 मार्च को पटना के अधिवेशन भवन में 12 बजे दोपहर से।
श्रोताओं, अब समय है आपके पत्रों के बारे में जानने का, आपकी राय में।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और साथ में आज मेरे साथ हैं
ज्योतिका सिंह।
ज्योतिका सिंह,
मेरा भी नमस्कार।
तो ज्योतिका, मैं एक पीला पोस्ट कार्ड आपके हाथ में देख रहा हूँ, क्या कह रहे हैं हमारे श्रोता?
ये पोस्ट कार्ड भेजा है तुंगनाथ यादव ने रेव घाट भटेनी से।
जी,
लिखते हैं कि बीबीसी का लगभग 45 वर्ष पुराना श्रोता हूँ। मेरी उम्र इस समय 61 वर्ष है, पर इनकी शिकायत है, मैं लगभग 200 पत्र पोस्ट कार्ड लिख चुका हूँ, किंतु कभी भी मेरा पत्र नहीं शामिल किया जाता।
अरे, ये तो बड़ी अचरज भरी बात है, क्योंकि हमारे पास पोस्ट कार्ड भी आते हैं, ईमेल भी आते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उनको शामिल किया जाए, जैसा आपके पत्र शामिल हो गया।
जी। और ये आगे लिखते हैं कि बीबीसी कार्यक्रम हाल ही में ये सुन रहे थे, जहां एक मित्र जो एमपी से थे, बीबीसी पर हिंदू और बीजेपी विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे।
तुंगनाथ जी, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, सभी का स्वागत है।
अगला पोस्ट कार्ड है यारा चुरू राजस्थान से, लिखते हैं, महोदया जी, मैं आपकी हिंदी प्रसारण सेवा का 1984 से अब तक नियमित श्रोता हूँ। रेडियो के माध्यम से आपके सुबह शाम के प्रसारण का आनंद लेता हूँ। इतने वर्षों से आपका नियमित श्रोता हूँ, पर पत्र कभी मेरा शामिल नहीं किया जाता।
अब तो शामिल हो गया, अब तो इनको शिकायत नहीं रहनी चाहिए।
पर इनकी छोटी सी एक और शिकायत है, लिखते हैं कि ये एक बीबीसी हिंदी प्रसारण का समय 30 मिनट से 40 मिनट तक चाहते हैं।
तो एसपी सिंह की ये चिट्ठी आपने पढ़ी, एक चिट्ठी लगे हाथों मैं भी पढ़ देता हूँ। शिवमूर्ति अवस्थी ने ये चिट्ठी लिखी है, लिफाफे में आई है, और ये लिखते हैं आलमबाग लखनऊ से, बहुत पुराने श्रोता हैं। कहते हैं कि बीबीसी द्वारा प्रस्तुत मनुष्य का उत्कर्ष, जो लगभग एक वर्ष चला था, 70 या 80 के दशक का है, बहुत शानदार था। कैलाश बुधवार का कोई कार्यक्रम समय हो तो कभी सुना देना। और ज्योतिका, ये हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, लिखते हैं 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, तब से ये हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। तो शिवमूर्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कभी संभव हुआ तो कैलाश बुधवार का हम जरूर उनकी आवाज आप तक पहुंचाएंगे। ईमेल भी अगर मैं पहले पढ़ दूं, एक सबसे ऊपर जो है मदन लाल लंबोरिया भिरानी राजस्थान से, सूर्यांशी पांडे और मेरे लिए है। सोमवार को पत्र वाचन में सूर्यांशी पांडे और राजेश जी ने बातें ज्यादा की, मेल और पत्र कम पढ़े, आगे से ऐसा मत करें। अरे भाई, ये तो मदन लाल जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हो सकता है ऐसी गलती हमसे हो गई हो।
अगला ईमेल राजेश जी, एक थोड़ी मेजर शिकायत है।
शिकायत है,
मनोज खाली हमसे विदा ले रहे हैं।
हमसे विदा ले रहे हैं?
लिखते हैं, आपकी कांग्रेस और राहुल गांधी समर्थित समाचारों और आपके रेडियो एडिटर के मोदी पूर्वाग्रह भरे ब्लॉग से व्यथित होकर मैं आपसे विदा ले रहा हूँ।
अरे ऐसा मत कीजिए भाई, इनका नाम दोबारा बताइए।
ये है मनोज खाली।
मनोज खाली साहब, आप हमसे विदा ले लें, ये हमको बात बिल्कुल जमेगी नहीं, और हम तो आपसे इसरार करेंगे कि ऐसा मत कीजिए। बीबीसी वेबसाइट में या बीबीसी के रेडियो प्रोग्रामों में न तो हम किसी की तरफदारी करते हैं और न ही किसी की हम अंध आलोचना करते हैं। तो आपको ये पता नहीं कैसे लगा, लेकिन जो वस्तुस्थिति है, राजनीतिक नेताओं की आलोचना भी की जाती है, वस्तुस्थिति को सामने रखा भी जाता है। पढ़ते रहिए, लेकिन हमें छोड़ के मत जाइए।
अगला ईमेल है रमाकांत सिंह का, लिखते हैं कि 1982 से नियमित श्रोता हूं मैं। 13 मार्च को संदीप सोनी द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहान पर संदीप जी और मेहनत कर सकते थे।
और मेहनत कर सकते थे, बिल्कुल, हमारी बात भी हुई उनसे और उन्होंने भी ये स्वीकार किया कि उसमें थोड़ी और मेहनत की जा सकती थी, कुछ और जानकारियां ली जा सकती थी। आपकी आलोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है।
पटना बिहार से आकाश राज लिखते हैं, इस सप्ताह राजेश जोशी और राजेश प्रियदर्शी, आप दोनों का ब्लॉग मैंने पढ़ा। एक पत्रकार के रूप आपका नजरिया काफी संतुलित लगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री उद्योगपति को गले लगाए, तब क्या वो बुत बनकर खड़ा रहेगा? अगर नहीं तो गले मिलने के दौरान पीठ पर हाथ रखना स्वाभाविक है। अगर संभव हो तो ब्लॉग को पॉडकास्ट के रूप में भी श्रोताओं तक पहुंचाएं।
बहुत अच्छा सुझाव है आपका काशराज जी। पॉडकास्ट के बारे में हमारे संस्थान के भीतर बहुत सारी बातचीत चल रही है, अगर संभव हुआ तो हम ब्लॉग्स को पॉडकास्ट के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जहां तक बात ब्लॉग की है, नजरिए की है, तो आपने अपना नजरिया पेश किया, उसी तरह राजेश प्रियदर्शी ने अपना नजरिया पेश किया, तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे से हमेशा सहमत ही हों।
मकली ठटा सिंध से शरीर ने लिखा है, बीबीसी पर तनकीद करते हुए मैं यही कहूंगी कि बीबीसी सच को सामने लाता है, जो कभी पाकिस्तान वालों को पसंद नहीं आता तो कभी इंडिया वालों को। आगे इन्होंने लिखा है, खेल की खबरों में पाकिस्तान की खबरें भी शामिल करनी चाहिए, खास तौर पर क्रिकेट।
देखिए, ये हमारी नई श्रोता हैं जो हमसे जुड़ी हैं, लगातार हमें चिट्ठी लिखती हैं पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, और और हम उनकी चिट्ठियां शामिल भी करते हैं। शीरिन जी, आपने जो कहा है कि आपका बीबीसी पर भरोसा है, तो ये भरोसा बना रहेगा, ये हमारा वचन है आपको। खेल की खबरों का जहां तक सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जब क्रिकेट होगा तो हम उसकी खबर आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन ये शायद संभव नहीं हो पाता है कि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स हो रहा हो उस पर भी हम उतना ही पूरा ध्यान दे पाए। हालांकि कुछ मेजर इवेंट होता है तो जरूर करते हैं।
जी बिल्कुल,
मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चिट्ठियां और हैं लेकिन हम सभी चिट्ठियों को ले नहीं पाएंगे। चलते चलते पता बता देते हैं, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखिएगा hindi.letters@bbc.co.uk पर।
नमस्कार।
आपके पत्रों के उत्तर दे रहे थे बीबीसी हिंदी रेडियो सेवा के संपादक राजेश जोशी और ज्योतिका सिंह। श्रोताओं, पत्र और मेल हमें यूं ही लिखता रहा करें और अब सुनिए खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूं राखी शर्मा। भारतीय खिलाड़ियों के विश्व कप से ठीक पहले आईपीएल में खेलने से उन पर पड़ रहा काम का बोझ चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ये फैसला अपने साथी खिलाड़ियों पर छोड़ दिया है कि उन्हें आईपीएल में कितने मैच खेलने हैं और कितने नहीं।
Yeah, we've discussed that as well. We've given the responsibility to the player.
हमने खिलाड़ियों को पूरी समझदारी से काम लेने और फ्रेंचाइजी प्रबंधन को सूचित करने की जिम्मेदारी दी है। वो हमारे फिजियो पैट्रिक के संपर्क में रहेंगे। विश्व कप के लिए सभी चीजों पर निगरानी रखी जाएगी। हम कोई ऐसा समय बताएंगे जहां खिलाड़ी विश्राम कर सकता है। वो निश्चित तौर पर इस मौके का फायदा उठाएंगे। विश्व कप 4 साल में एक बार आता है और आईपीएल हर साल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम टूर्नामेंट में खेलने को लेकर प्रतिबद्ध नहीं है। हमें समझदार बनना होगा और अच्छे फैसले लेने होंगे।
आईपीएल 23 मार्च से शुरू हो जाएगा और इसके समापन के तुरंत बाद भारतीय टीम को इंग्लैंड रवाना होना है, जहां 30 मई से विश्व कप खेला जाएगा। और वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को आईपीएल के आगामी संस्करण के लिए दिल्ली कैपिटल्स का सलाहकार नियुक्त किया गया है। गांगुली अपनी नई भूमिका में टीम के मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के साथ मिलकर काम करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स अब तक आईपीएल का एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में दिल्ली की टीम अपना पहला मैच 24 मार्च को मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेलेगी। वहीं अपने पहले होम मैच में ये टीम 26 मार्च को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ उतरेगी। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
श्रोताओं, आज बीजेपी नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद की सीट लेने से इनकार कर दिया था और इसे चीन को दिलवा दिया था। द हिंदू की रिपोर्ट में कांग्रेस नेता और संयुक्त राष्ट्र में अवर महासचिव रहे शशि थरूर की किताब नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया का हवाला दिया गया है। और इस किताब में शशि थरूर ने लिखा है कि 1953 के आसपास भारत को संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने चीन को दे दिया। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रविशंकर प्रसाद के दावे में कितना सच है और कितना झूठ है, तो आप आइए हमारी bbc hindi वेबसाइट पर और जानिए कि असल बात क्या है और जवाहरलाल नेहरू ने वाकई में क्या कहा था, क्या नहीं कहा था। और इसके अलावा और भी आप खबरें जान सकते हैं, जैसे सऊदी अरब को अमरीकी सीनेट से तगड़ा झटका लगा है और साथ ही शिया सुन्नी टकराव से आगे बढ़ पाएंगे क्या पाकिस्तान और ईरान। ये सारी जानकारियां, सारी खबरें आपको मिलेंगी हमारे bbchindi.com के पन्ने पर। अब से कुछ ही देर में बजेंगे 8:00 और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
पुलवामा हमले के लगभग एक महीने बाद करतारपुर गुरुद्वारा साहिब कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच आज अहम बैठक हुई। दोनों ही देशों के बीच हुई इस अहम बैठक में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का संचालन जल्द से जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने पर सहमति बनी है। केरल से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टॉम वडक्कन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले वडक्कन का बीजेपी में शामिल होना इस पार्टी के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। सीरिया के भविष्य को लेकर ब्रसेल्स में एक सम्मेलन किया जा रहा है। ये सम्मेलन यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया को इससे उबारने की कोशिश के तहत देखा जा रहा है। नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में बहुमंजिला इमारत ढह गई थी, जिससे अब लोगों को निकालने का काम बंद कर दिया गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। फेसबुक में आई गड़बड़ी अब दूर होती दिख रही है। लगभग 12 घंटे तक बाधित रही फेसबुक की सेवा अब ठीक हो गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। मोहम्मद शाहिद को सभी साथियों के साथ दें अनुमति। नमस्कार।